Matthew chapter 28, we read a couple of verses like this.
Matthew 28 में कुछ वचन हैं जो हम पढ़ सकते हैं अपने बाइबल खोल के पढ़े.
Verse 18.
उसका 18 से.
And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth."
यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है.
And verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit."
इसीलिए तुम जा सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो.
This is something very often comes to my heart and help me personally.
और ये बहुत बार मेरे हृदय को छुआ है और व्यक्तिगत रूप में मेरे सहायता भी किया है.
It speaks about Jesus claiming that all authority has been given to me in heaven and on earth.
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये बताता है कि पूरा अधिकार जो है उसे दिया गया है पृथ्वी में और स्वर्ग में भी.
So this is the basis of being a disciple of Jesus, being a follower of Jesus.
और ये एक बेस है जब हम प्रभु यीशु मसीह का जब हम चेले बनते हैं.
We are coming willfully and joyfully coming under the authority of Jesus Christ.
और हम स्वयं अपने इच्छा से हम उसके अधीन में आते हैं, उसके अधिकार के नीचे हम आते हैं.
And it's a wonderful thing to remember in a practical life. All authority is with Jesus.
और अपनी जो रोज के जीवन में हम इस बात को हम याद रखना जरूरी है कि हम पूरा जो अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के पास है.
In heaven and on earth.
स्वर्ग में और पृथ्वी में पूरा अधिकार उसको दिया गया है.
So when I say that I want to be a believer, I want to be a disciple of Jesus, we are coming under that authority.
और जब मैं कहता हूँ कि मैं एक विश्वासी हूँ और मैं एक परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, तो मैं उसके अधीन में आता हूँ, उस अधिकार के नीचे आता हूँ.
It's a great privilege.
और एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है मेरे लिए.
So I have seen this working in my life, even in earthly needs, even things like God appointing a job for us.
और ये भी ये चीज को मैंने देखा है इस पृथ्वी के चीजों में भी, जैसे कि एक नौकरी के संबंध में भी परमेश्वर देता है.
Once we give our life to Jesus entirely, he is taking responsibility concerning us.
और जब मैं पूरा जीवन जो हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमारे जीवन का ख्याल रखता है.
So that's a great privilege.
और बहुत ही एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य हम सबके लिए है.
It is like Jesus told Peter, his disciple, put your net on the right side of your boat, and you know the result. He caught fish which had never seen in his life.
और जैसे कि पत्रस को यीशु मसीह ने कहा, धन्य और अपना जाल को बिछा, जो मछली पकड़ने के लिए जो उसने कभी नहीं देखा उतना उसने वो पकड़ पाया.
So what I'm trying to say is, when we give ourselves willfully our life to Christ and come under authority, it's a wonderful life.
और ये कहना चाहता हूँ कि हम जब अपने जीवन को देते हैं पूरे इच्छा के द्वारा और उसके उस अधिकार के अधीन में जब हम आते हैं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए.
And verse 20 also, he says this magnificent promises follows, "I am with you always, even to the end of the age."
और यहाँ पे आखिर में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे साथ हूँ अंतिम तक.
So when we are a disciple of Jesus, the promise of his presence is there with us.
और जब हम परमेश्वर के चेला है, उसका जो वायदा जो है हमारे साथ लगातार है.
It is not for one day, it's not for one week, it's not for some years, till the end of the ages.
और एक दिन के लिए नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, लेकिन पूरा अनंत काल के लिए है.
In Isaiah chapter 50, Isaiah 50,
इशाया का 50,
verse 4, "The Lord has given me the tongue of disciples, that I may know how to sustain a weary one with a word. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple."
और यहाँ पे चार में ऐसा लिखा गया है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले जीभ दिया है, ताकि मैं उसका एक दास बन के उसका मैं वचन को सीखूं.
So a disciple means somebody who is learning.
और दास का मतलब जो है जो सीखना चाहता है.
Somebody who is under training.
और जो जो सीखने का training में है.
And in this verse we read that the Lord has given me the tongue of disciples.
और यहाँ पे जो सीखने वाली जुबान मुझे परमेश्वर ने दिया है दास का.
So something when we have near a disciple of Christ, this something, you know, something right in the beginning, the Lord wants to teach us how to speak.
और शुरुआत में ही जब हम उसका शिष्य बनना चाहते हैं, परमेश्वर सिखाता है कि कैसे हमें बोलना है.
How to use our tongue?
किस तरीके से मेरे ज़ुबान को मैं इस्तेमाल करूं?
We should seek to be trained by Jesus. We can seek to be trained by the Holy Spirit. How to use my tongue?
और मैं मुझे सीखना है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के द्वारा कि कैसे मैं अपने ज़ुबान को इस्तेमाल करूं?
The word used the tongue of a disciple.
और यहाँ पे जो है एक एक सीखने वाला एक दासत्व का एक ज़ुबान.
That is something which Jesus is offering us to train our tongue to be tongue of a disciple.
जिसमें हम सीखे एक ऐसा जुबान जिस जो मैं सीखना चाहता है.
So what is the result when you are trained, when your tongue is trained by Jesus?
और उसका परिणाम क्या होता है जब हमारा जुबान सीखता है और प्रभु यीशु मसीह जब सिखाता है, उसका परिणाम क्या होता है?
We can sustain the weary one with a word.
और हम संभाल सकते हैं जो कमजोर है, उनको हम संभाल सकते हैं.
We can offer a word of encouragement.
और उनको हम उत्साहित कर सकते हैं.
We can lift up someone who is down in spirit.
और जो आत्मा में जो गिर गए हैं उनको हम उठा सकते हैं.
So how are we? How well our tongues are trained now?
और कितना अच्छा हमारा जो जुबान है वो सिखाया गया है.
This is something which can challenge us, how well we are able to comfort others.
और ये एक चुनौती की बात है, किस तरीके से मैं दूसरा को उत्साहित कर सकता हूँ, आराम दे सकता हूँ.
How well we are able to sustain the weary ones.
और किस तरीके से जो एकदम एकदम गिर गए हैं उसे मैं कैसे संभाल सकता हूँ.
So that is something which God wants to teach us being a disciple.
और यही परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, चेले होने के नाते वो सिखाना चाहता है.
To have the tongue of a disciple.
और वो एक चेला, एक धास का एक जुबान.
Some of us would have read the last week's word for the week.
और पिछले हफ्ते का जो word for the week आप लोगों ने पढ़ा होगा.
So it speaks about the environment of heaven right upon earth.
और जो स्वर्ग का जो environment है पृथ्वी के ऊपर.
And we can be people who can bring the environment of heaven upon others.
और हम उस स्वर्ग का जो अनुभव जो है दूसरे के ऊपर हम ला सकते हैं.
Our very presence, a few words that we utter.
और हम जो बोलते हैं और हमारा उपस्थिति.
It need not be a long preaching.
और वो बहुत बड़ा प्रचार होने की जरूरत नहीं है.
Sometimes our very presence can refresh others.
और हमारा सिर्फ एक उपस्थिति वहां पे होने से दूसरों को वो उत्साहित ला सकता है.
That's what God wants to do in our life, accomplish in our life.
और यही चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है.
So when I read that message, you know, there was a great longing in my life to be like such a person.
और जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो मेरे अंदर बहुत ही एक चाहत पैदा हो गया कि इस तरीके से मेरा जीवन होना जरूरी है.
A person who can bring the environment of heaven to other people.
और जो स्वर्ग का जो एनवायरमेंट है, वो जो स्वभाव है, वो चीज हम दूसरे लोगों के ऊपर हम लाएं.
And that verse also speaks about listening.
और वो जो वचन जो है इवन सुनने के बारे में वो बताती है.
He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple.
और प्रति सवेरे वो मुझे जगाता है और मेरे आवाज को वो सुनता है.
So every day we should seek to listen what the Lord is speaking to us.
और प्रतिदिन मुझे सुनना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है.
So these two things go hand in hand. One is speaking, the other side is listening.
और ये दोनों चीज जो है, एक जो है बोलना और दूसरा जो है सुनना, ये दोनों एक साथ जाती है.
If we have the habit of listening to Jesus, we will be able to speak well to others.
और जब हम सुनने की आत्मा हम रखते हैं अच्छे से, तो दूसरे के पास बोलने के लिए भी हम अच्छे से बोल पाएंगे.
It's a good attitude to preserve in our life, always seeking to listen, understand what Jesus is trying to speak to me.
और एक अच्छा एक स्वभाव है जब मैं ये ठान लेता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से सुनना है और वो क्या कहना चाहता है, मुझे वो सुनना है.
every day and every situation in life what the Lord is trying to speak to me.
Har ek paristhiti mein har ek din Parameshwar mujhse kya kehna chahta hai.
And once we understand, our life is much easier.
Aur jab main ise samajh sakta hu to tab jaakar ke mere jeevan jo hai bahut aasan ho jayega.
In different situations of life the Lord is trying to speak to us.
Aur har ek paristhiti mein Parameshwar mujhse baat karna chahta hai.
So if you are able to listen and act, it is a wonderful life.
और जब मैं सुनने का वो चीज रखता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक अच्छा बात बन जाएगा.
That in fact actually is a Christian life.
और ये एक मसीहा का एक जीवन बन जाएगा.
In Luke chapter 10.
और लुका रचित सुसमाचार उसका दसवां अध्याय.
Luke 10. We know this familiar story of Martha and Mary.
और मार्था और मेरी के बारे में हम जानते हैं.
Jesus went to the house of Martha and Mary.
और प्रभु यीशु मसीह जो है मार्था और मेरी के घर जाता है.
Martha, we know she was busy with many things.
और हम जानते हैं कि मार्था जो था बहुत ही चीजों के ऊपर उलझी हुई थी.
And Mary was seated at the Lord's feet and listening to his word.
और हम देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के नीचे बैठ करके वचन सुन रही थी.
And it's written about Martha, she was distracted with all her preparations.
और हम देखते हैं कि मार्था के बारे में ऐसा लिखा है कि वो बहुत उलझ गई थी.
This can happen to us. We can be distracted with many even good things.
और हम अच्छे बातों के ऊपर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उलझा जा सकते हैं.
We know not be doing any sinful or bad things.
और हो सकता है कि हम कोई पाप या कुछ गलत चीज कर रहे हैं.
But we are busy and distracted even the good things. In Martha case, he did not do anything wrong.
और हम अच्छे चीजों के ऊपर उलझे हुए हैं, कर रहे हैं उस चीजों के ऊपर उलझ गए हैं.
But still she was so distracted, but she missed the most important thing.
हम देखते हैं कि वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, बहुत ही उलझी हुई थी.
And she complained even to the Lord. The Lord, you are not caring about caring. My sister is neglecting the activities.
और वहाँ पे हम देखते हैं कि मार्था कंप्लेन करती है और कहती है कि आप कि मेरा बहन कोई मदद नहीं कर रही है.
So Jesus' response was, Martha, Martha, you are worried and bothered about many things.
और वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप जो है मार्था मार्था तुम बहुत चीजों के ऊपर सोच रहे हो और उसके बारे में आप चिंता क्यों कर रहे हो.
बट ओनली वन थिंग इज नेसेसरी,
एक ही चीज की जरूरत है.
एंड मेरी हैज चोसन दैट गुड थिंग,
और वो अच्छी जो बात है मरियम ने चुना है.
एंड इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर,
और वो बात जो है मरियम से लिया नहीं जाएगा.
सो वंस वी मेरी चोस टू लिसन व्हाट जीसस वाज ट्राइंग टू स्पीक टू हर.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम जो है वो सुन रही थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है.
So, once we listen to Jesus, nothing else is important.
और जब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं कुछ और चीज की हमको मुख्य और कुछ चीज की जरूरत नहीं है.
Everything else will fall in line.
और बाकी जो चीज है वो लाइन में आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा.
Otherwise we can be busy, active, distracted with fruitless work.
और हम दूसरे बातों में उलझे हुए रहेंगे और दूसरी चीजों में कामों में उलझे हुए रहेंगे जिसमें कोई फल उत्पन्न नहीं होने वाला है.
विदाउट नोइंग गॉड्स पर्पसेस, गॉड्स प्लान फॉर आवर लाइफ, वी कैन टॉयल 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 जस्ट लाइक पीटर डिड द होल नाइट.
और परमेश्वर का योजना जाने बिना हम उसके ऊपर परिश्रम करते रहेंगे पतरस जैसा.
Without bringing any result.
और उसका कोई परिणाम या कोई फल नहीं होगा.
But listening to Jesus and obey.
और जब हम प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं और उसके अधीन में उसका काम करते हैं.
That is a one single thing we should focus on.
और उसके ऊपर ही हमें ध्यान लगाना और फोकस करना है.
And if you are truly a disciple of Jesus, we will do that.
और हम सचमुच में अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, हम जरूर वैसे ही करेंगे.
And Matthew chapter 11.
मत्ती का सुसमाचार 11.
Verse 28 to 30.
और 28 से लेकर के आप पढ़ सकते हैं.
Jesus said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा.
So Jesus is inviting all of us, all of those who are weary and heavy laden.
प्रभु यीशु मसीह सबको बुला रहे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं और जो बोझ से दबे हैं.
We are fed up with our own toil and work.
और हम सिर्फ हम पूरा तरीके से हार गए अपने कामों से अपने परिश्रम से अपने बोझ से.
She's inviting us and offering rest.
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है न्योता दे रहा है कि वो हमें वो विश्राम देगा.
Take my yoke upon you and learn from me.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो.
So there is again, Jesus is willing to train us. Yoke means being trained, like a experienced bullock training other bullock.
और यहाँ पे जुआ उठाना मतलब हमें वो सीखना है कि जैसे कि एक दूसरा जो बैल है और एक बैल को सिखाता है.
If I am willing to come under the yoke of Jesus, he will train me.
और जब मैं परमेश्वर के उस जुआ के नीचे आता हूँ तो वो हमें सिखाने को तैयार है.
Whatever may be our situation, he will train us.
और जो भी हमारा परिस्थिति है वो कुछ भी हो जाए वो सिखाने को तैयार है.
एंड वी थिंक वी आर वेरी आई ट्राइड माई बेस्ट आई एम वेरी एंड हेवी लेट जस्ट लाइक पीटर टॉयलिंग ओवर होल नाइट.
अगर हम सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ परिश्रम किया है और मैं थक गया हूँ और मैं नहीं कर सक रहा हूँ तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है.
आर वी विलिंग टू कम अंडर द योक ऑफ जीसस?
हम प्रभु यीशु मसीह के उस जुआ के नीचे आने को तैयार हैं?
और वी वांट द फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट वी वांट?
क्या आपको वो स्वतंत्रता चाहिए कि आपके मर्जी से जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हें करना
है? इट्स अ वंडरफुल थिंग टू विलिंगली joyfully come under the yoke of Jesus.
और एक बहुत ही बड़ा एक अच्छी बात है कि हम एक खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह के उस जुआ के नीचे हम आए.
And he will take the responsibility to train us.
और वो जिम्मेदारी उठाएगा और हमें सिखाएगा.
It's not dependent again then on our own effort, self effort.
ये चीज जो है मेरा ही एक व्यक्तिगत कोशिश के ऊपर लगा नहीं है.
And see, remember, one of the first thing he wanted to teach us is humility.
और सबसे पहले बात जो हमें वो सिखाना चाहता था वो है दीनता. हमें दीन होना है.
Gentleness.
और नम्र था.
For I am gentle and humble in heart.
और जैसा प्रभु यीशु मसीह नम्र है वैसा हमें होना है.
So when we come under the authority of Jesus, there is rest.
और जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार के नीचे आते हैं वहां पे आराम है.
Outside the yoke of Jesus, there is unrest and struggle and toil, because everything responsible on us, my toil, my struggle.
और प्रभु यीशु मसीह के उस जुआ के बाहर जो है पूरा जो है वहां पे हमें सिर्फ परिश्रम करते रहना है.
बट when I come willingly under the yoke of Jesus Christ, he takes the responsibility concerning.
और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के जुआ के नीचे आता हूँ तो मुझे वहां पे वो विश्राम मिलता है. वो पूरा जिम्मेदारी मेरा वो उठाता है.
When he takes the responsibility, I have rest. That's what Jesus said.
और उस जिम्मेदारी को मुझे उठा लेना है कि मुझे वहां पे मुझे वो आराम वो विश्राम मिलेगा.
You will find rest for your souls.
और वहां पे आत्मा को एक विश्राम का जगह मुझे मिलेगा.
Do we want the rest which Jesus wants to offer?
और आपको वो आराम या वो विश्राम चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है?
Or you are happy in struggling, you are depending on your own strength?
और क्या आप खुश हैं कि आपके ही उस संघर्ष में आप लड़ रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं?
Whatever it is, whether to be right to be a better person or in earthly situations of life, we can struggle in our own strength.
और कुछ भी हो जाए कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं सबसे अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने ही संघर्ष में अपने ही कोशिश में उसको कोशिश कर रहे हैं.
But there is a better way. Come under the yoke of Jesus Christ.
और एक अच्छा एक रास्ता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस जुआ के नीचे हम आए और उस विश्राम को हम ग्रहण करें.
There he owns responsibility.
और वहां पे प्रभु यीशु मसीह वो जिम्मेदारी अपना वो उठाता है.
लुक चैप्टर 14,
लुका रचित समाचार 14वां अध्याय में,
लुक 14, जीसस इज टॉकिंग अबाउट एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन हु अरेंज्ड अ बिग डिनर.
और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति जो है भोजन का तैयारी करता है उसके बारे में यहाँ पे बताता है.
एंड आफ्टर दैट He send his servants to invite.
और उसके बाद वो अपने जो सेवकों को भेजता है कि जाके बुलाने लोगों को बुलाने के लिए.
That is in verse 16 onwards.
और वो हम 16 से लेके हम पढ़ सकते हैं.
Come, for everything is ready now.
और उसने उनसे कहा सब कुछ तैयार है आ जाओ.
So the Lord is offering us something.
और यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह कुछ देना चाहता है।
But it says that they all alike began to make excuses.
और लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं सब लोग बहाना बनाने लग गए।
It can happen to us.
और ये हमसे भी हो सकता है।
When the Lord has prepared something exceptionally good, and we can find excuses.
और जब प्रभु परमेश्वर ने कुछ चीजों को बना के तैयार बना के रखा है तब जाकर के हम कुछ बहाना बनाते हैं।
नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर इन्विटेशन, नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर कॉलिंग,
और उस बुलाहट को या उस न्योता को हम पहचानते नहीं हैं।
वन सेड आई हैव बॉट ए 5 योक ऑफ ऑक्सन, आई एम गोइंग टू ट्राई देम आउट, प्लीज एक्सक्यूज मी।
और किसने कहा कि 5 बैल को लिया है उसको जाके मैं मुझे देखना है, तो वो उस जगह निकल गया।
अनदर सेड आई हैव मैरिड ए वाइफ, for that reason I cannot come.
और एक ने कहा कि मैंने शादी किया है, मेरे बीवी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, तो वो निकल गया।
So we can, these people are finding excuses.
हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे बहाना बना रहे हैं।
So what did this master who arranged the dinners did?
और ये जो स्वामी जिसने उस भोजन को तैयार किया उसने क्या किया?
He offered his invitation to others.
और उसने उस न्योता को जो है उस निमंत्रण जो है दूसरों को उसने दिया।
This is what can happen if you don't value what God has given to us and if you despise it.
और जब यही हो सकता है जब परमेश्वर ने जो चीज रखा है उसको हम कोई मोल नहीं जानते हैं और उसको हम जानते नहीं है।
If you try to find all kind of excuses,
जब हम अलग अलग तरीके का हम बहाना बनाते हैं उसके लिए,
it is unfortunate that what is offered to us, someone else will receive.
और जो हमारे लिए रखा गया और कोई लेके चला जाएगा।
That's a sad situation.
ये एक 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 बहुत ही दुखी परिस्थिति है।
Unfortunately, that is what could happen if we don't value the invitation.
और ऐसा ही अगर हो जाएगा अगर मैं हम उस न्योता को अगर ग्रहण नहीं करते हैं।
And we read that master is telling on verse 24.
उसका 24 में हम पढ़ सकते हैं।
For I tell you, none of those men who were invited shall taste my dinner.
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन्होंने आमंत्रित लोगों से कोई मेरे भोजन को ना चखेगा।
So if you despise our invitation, that is what could happen.
और अगर हम उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे यही चीज होगा, वो नहीं चखेंगे।
What is kept for us, what is meant for us, someone else can get it.
और जो हमारे लिए रखा गया है वो कोई और लेके चला जाएगा, दूसरे के लिए जाएगा।
Because we despise it, we find excuses.
क्योंकि हमने टुकराया है उसको और हमने उसको स्वीकार नहीं किया है।
There are other needy people.
और बहुत से लोग हैं जो उसका महत्व को जानते हैं।
We read in the following verses, Jesus was trying to send a message.
और आगे प्रभु यीशु मसीह कुछ संदेश देना चाहता था।
A large crowds were going along with him.
और बहुत बड़ा एक भीड़ उसके साथ साथ जा रहे थे।
He turned back and told them.
और उनको घूम करके उसने उनसे कहा।
Verse 26.
उसका 26 में हम पढ़ सकते हैं।
If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
और यहाँ पे 26 में ऐसा लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।
Meaning if we have other priorities, our father, all my.
और दूसरा जो चीज जो के ऊपर मेरा 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 जो बात है,
he cannot be his disciple.
मैं उसका चेला नहीं बन सकता हूँ वैसे एक भावना के साथ।
Jesus used the word hate.
और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उसका घृणा करो।
If you don't hate your own life, you cannot be my disciple.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर अपना प्राण को भी प्रिय नहीं जानना है तो अगर नहीं जानना है।
That is one of the first thing we should learn to practice in our denying ourselves, hating ourselves.
और एक चीज मुझे practice करना है कि सबसे पहली बात कि मुझे अपने आप को इनकार करना है सबसे पहले।
And Jesus also said in verse 24, 27, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
और यहाँ पे 27 में ऐसा लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता.
See, it is again written very clearly in another scripture, Luke chapter 9:23.
और इसके बारे में और अच्छे से लूका रचित सुसमाचार 9:23 में लिखा गया है.
If anyone wishes to come to me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me.
और वहाँ पे ऐसा लिखा है, कोई मेरे पीछे होना चाहता है, उसको उस क्रूस को उठाना है और प्रतिदिन मेरे पीछे आना है.
It is a choice. Being a disciple is a choice.
और परमेश्वर का चेला बनना है वो एक 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 चुनने की बात है.
And it is an indescribable privilege.
और इस चीज का वर्णन नहीं कर सकते, वैसा एक एक निमंत्रण है मेरे लिए.
And you wish to follow Jesus. We had to deny ourselves.
अगर हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा होना है तो मुझे मेरे अपने आप को मुझे इनकार करना है.
We had to start working in to deal with ourself life.
और मुझे अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में मुझे काम करना है, कार्य करना है.
And not only that, we had to take up his cross daily and follow Jesus.
और लगातार मुझे उस क्रूस को उठाना है प्रतिदिन और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है.
When Jesus wrote, when this scripture was written, Jesus time, when taking up one's cross means, it has a meaning. When somebody is seeing someone carrying a cross and walking.
और प्रभु यीशु मसीह के समय में जब ये क्रूस उठाना का मतलब एक 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 उसका एक मतलब था, एक मीनिंग था. एक व्यक्ति अगर क्रूस उठाता है तो
people who are watching will know that this man is going to be crucified on that cross. He's going to.
और जो लोग उसे देखेंगे वो जानेंगे कि ये सूली के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहा है.
So that is a meaning when we are willing to be dead to ourselves.
और इसका मतलब यही अर्थ है कि मुझे अपने आप में मुझे मरना है.
So may God really help us, dear brothers and sisters.
परमेश्वर हमारी सहायता करें प्यारे भाई और बहनों.
To learn to deny ourselves.
कि हम सीखें अपने आप को इनकार करना.
And to take up a cross daily and follow Jesus.
और लगातार प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस को उठाने के लिए और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए.
It's good to come under the authority of Jesus.
और बहुत ही अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह का उस अधिकार के नीचे आना.
Because all authority is given to Jesus in heaven and on earth.
क्योंकि पूरा जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी में.
When I am a disciple, when I say I am a Christian, the meaning of Christian is a disciple.
और जब मैं अपने आप को मसीहा कहलाता हूँ, मतलब मैं उसका चेला हूँ.
Because disciples were called Christians in a place called Antioch.
और एंटियोक के जगह में वो जो चेले थे उन्हें मसीहा कहलाया गया था.
So being a disciple means I am surrendering my life completely to Jesus.
और जब मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला होता हूँ तो मैं पूरे तरीके मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करता हूँ.
I am coming under the authority of Jesus.
मैं प्रभु यीशु मसीह के उस अधीन के नीचे आता हूँ.
I am willing to be trained by him.
और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ.
And when we do that, he is taking the responsibility concerning us.
और वो मेरा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है.
Everything concerning us, he will take care.
और जो भी कुछ मेरे 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 बारे में है वो उसका ख्याल रखेगा.
Including our earthly needs.
और जो भी पृथ्वी की बातें भी वो उसका ख्याल प्रभु परमेश्वर रखेगा.
Let us seek to be disciples, brothers and sisters.
और हम इसी चीज के चाहत के साथ हम बने रहे कि हम उसके चेले बने.
Don't find excuse, hold on to things.
हम उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाए और कुछ चीजों को ऊपर हम पकड़ते रहे.
Our possessions.
हमारा जो संपत्ति.
Our time.
हमारा समय.
Our career.
हमारा हो सकता है काम के विषय.
Our ambitions.
और हमारे जो आगे जो भविष्य की बातें.
Just surrender under the authority of Jesus.
ये पूरे बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार के नीचे हम समर्पण करें.
It's a wonderful, unspeakably wonderful thing to live a completely surrendered life.
और बहुत ही एक वर्णन की बाहर की बात होगा कि ऐसा एक जीवन जब हम उसके समर्पण में जब हम बिताते हैं.
Someone in charge of our life who has authority, all authority under heaven and earth.
और जो हमारा हमारे ऊपर अधिकार करता है उसका ऊपर उसके पास पूरा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है.
It is not a ordinary invitation.
और एक साधारण एक न्योता नहीं है.
If you truly find it, we will be willing to give any cost.
और अगर हम सचमुच में अगर हम उसको पाते हैं तो हम कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे.
Because we know there is nothing comparable to that.
और क्योंकि हम जानते हैं इसकी उसके मूल्य कुछ भी नहीं है.
Someone who has authority under heaven, earth is offering to take responsibility concern me and training me. And make me a disciple.
और जो व्यक्ति जिसके पास उस पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है वो तैयार है मुझे सिखाने के लिए और मेरा पूरा जिम्मेदारी उठाने के लिए.
That is why Jesus said, who the kingdom of God is like a trader, a merchant who found a precious pearl, hidden under a piece of earth.
और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज एक व्यापारी का जैसा है जिसने एक मोती को पाया पृथ्वी के नीचे दबा हुआ.
When he found in that land, in that place, there is a precious pearl.
और जब उसने अपने भूमि के ऊपर उसने उस मोती को पाया,
he went and he was willing to sell everything he has to buy that property.
और उस मोती को खरीदने के लिए उसने अपने पूरे जायदाद जमीन को बेच दिया उस मोती को खरीदने के लिए.
He knows that those pearls are far exceeding anything that he has.
क्योंकि वो मोती जो है उसके 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 ऊपर है.
But when we don't recognize value it, we will find excuses.
और जब हम उस मोल को नहीं जानते हैं तो तब जाकर के हम बहाना बनाने लगेंगे.
We will be after worthless things. Like that man, I have bought 5 oxen, I married a wife, I have bought a piece of land. It's nothing compared to God's calling.
हम उस चीज के पीछे लग जाएंगे जैसे उस व्यक्ति जैसे जिसने बैल को खरीदा है और जिसने शादी किया है और जिसने जमीन को खरीदा है, वैसे चीजों में जो नष्ट होने वाले चीजों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे.
So let us desire and seek for a revelation about our calling.
हम उस प्रकाशन को ढूंढने की हमारा बुलावट क्या है.
When you understand that, we will gladly sell out everything and offer our life.
और जब हम इसको समझेंगे हम सब चीज को हम बेच देंगे.
When you don't understand, it is then we will try to pursue. We'll go after.
अगर हम इसका समझ हमारे पास नहीं है तो हम फिर नहीं समझ पाएंगे.
We will be after worthy things, waste away our time.
और हम उस संसार की बातों के ऊपर उलझ जाएंगे जिसके ऊपर जिसका कोई मोल नहीं होगा.
Amen.
Amen.
As we heard now, there are worthy things and worthless things that we can pursue.
और योग्य की बात है और योग्य अनयोग्य की वस्तुएं भी है.
A 5-year-old child will pursue after things that 20-year-old will think is like, what is this? What he is pursuing after?
और जैसे कि एक 5 साल का बच्चा जो है उस चीज के ऊपर ध्यान लगाएगा जबकि एक 20 साल का जो व्यक्ति होगा वो पूछेगा कि ये क्या चीज है, इसका कोई व्यर्थ है.
When we see a small child like a 5-year-old fighting for something that is so silly, we might think in our mind what that person is fighting, but we know that the child's mind is still small.
और जैसे कि 5 साल का बच्चा कुछ चीजों के ऊपर झगड़ा करता होगा जबकि उसका कोई मूल्य नहीं है और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे.
When we as brother said, we are Christians. So when we as Christians, when we fight for the things of this world, that's the same thing. Like we are fighting, like small 5-year-olds fighting for toys.
और जब हम एक मसीहा होके इस संसार की चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसी समान एक 5 साल के जो बच्चा जो है एक खिलौना के लिए लड़ते हैं वैसा.
I want to judge myself whether I am fighting for the toys of this world.
और मुझे अपने आप के ऊपर न्याय करना है कि मैं संसार के बातों विषय के ऊपर लड़ रहा हूँ क्या.
Why is it a toy? Because after I die, it has no zero value.
क्यों ये संघर्ष है? क्योंकि बनने के बाद उसका कोई मोल नहीं रखता है.
So that means if I run after those toys, I will waste my life on this small life on this earth.
और मैं जब उस चीजों के ऊपर परिश्रम करता हूँ और भागता हूँ उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा.
एंड
हम इस पृथ्वी के ऊपर लगातार नहीं रहेंगे.
We are going to live maybe for 80, 90 or whatever God has given. Some time is there.
और जैसे कि परमेश्वर ने हमें कितने साल रहने के लिए हो सकता है 80 या 90 साल तक जो भी टाइम परमेश्वर ने नियुक्त किया उस समय तक रहेंगे.
But before eternity it is nothing.
लेकिन अनंत काल के सामने वो कुछ भी नहीं है.
Do I want to invest my life on useless things on this earth and then standing before God I see what I have done with my life and God will say, I had so much plans for you.
और क्या मैं वो नाश होने वाली वस्तुओं के ऊपर अपने मन को लगाना चाहता हूँ और जहाँ पे प्रभु कहेगा कि मेरा योजना कुछ और था आपके लिए.
When I work in my job, that is not my goal of life.
और जब मैं काम कर रहा हूँ काम के जगह पे वो मेरा लक्ष्य नहीं है.
I have to work faithfully, that is there, but my goal is something else.
और मुझे विश्वास योग्य से काम करना, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो अलग है.
That is why, as brother said, my eyes need to be opened fully.
और इसीलिए मेरा जो आंखें हैं पूरी तरीके से खुला रहना है.
Jesus, when he came on the earth as from the beginning, his eyes were opened.
और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हम देखते हैं कि उसका पूरा प्रभु यीशु मसीह का आंखें खुला हुआ था.
He had a tongue of a disciple.
और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर वो आत्मा वो चेला का जो जुबान थी वो था उसके पास.
We know that he didn't come like God, like he gave up his powers when he came. He didn't use his powers as God when he was on this earth.
और उसने अपने पूरे जो शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया जब वो पृथ्वी के ऊपर था.
He had to learn to listen.
और उसने सीखा सुनने के लिए.
So that means he was made like me and he had to listen every day to the Father, what the Father is telling.
और वो मेरा जैसा बनाया गया था कि वो लगातार वो सुनने के आत्मा उसके अंदर थी.
So as brother said, we are his disciples, so we have the same, we have to follow him.
और हम जैसे उसके चेले हैं उसी तरीके से हम भी उसको उसी तरीके से चलना है.
In one verse, there is a verse in Ephesians which says that Ephesians
का पुस्तक
in the fourth chapter 29th verse,
चौथा अध्याय का 29.
Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आश्वासक के अनुसार वही निकले जो 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 उसके अनुसार ही निकले जो उत्तम है.
So and the next verse says, do not grieve the Holy Spirit of God.
और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा को हमको शोकित नहीं करना है, सिर्फ शोकित नहीं करना है.
That means when I speak unwholesome word, when I speak corrupt words from my mouth, I grieve the Holy Spirit.
और जब मैं गंदी बात मेरे मुंह से निकलता है तो मैं पवित्र आत्मा को मैं दुख पहुंचाता हूं, शोकित करता हूं.
This is one area where I also need to work out, because this tongue need to be under the control of the Holy Spirit.
और ये जो जुबान जो है, ये जो है पवित्र आत्मा के अधीन में होना है, इसके ऊपर मुझे काम करना है.
Sometimes at a moment when I am not so careful, I can speak unnecessary things with my mouth.
और जब मैं एकदम ऐसा ही साधारण रूप से रहता हूँ तो चौकस नहीं रहता हूँ तो कुछ भी बात निकल सकती है.
And then the Holy Spirit is grieved and the Holy Spirit cannot stay in that heart where lot of useless and corrupt words are there.
और पवित्र आत्मा वहाँ पे निवास नहीं कर सकते जहाँ पे गंदी बात निकलती है.
Then immediately I need to confess and ask God to cleanse me from that.
और मुझे उसी क्षण में मुझे क्षमा मांगना है और मुझे साफ करने के लिए मुझे मांगना है, प्रार्थना करना.
And when I speak lot of corrupt words, I am corrupting others also with my words.
और जब मैं गंदा बात को कहता हूँ तो दूसरों को भी उस गंदगी को मैं पहुँचा रहा हूँ, फैला रहा हूँ.
So the Holy Spirit will depart from that place.
और पवित्र आत्मा उस जगह से निकल जाएगा.
So I need to ask, as we know that when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, first thing is to it was on the tongue of those people.
और जब पहला जो पंतिकॉस के दिन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जुबान के ऊपर आया.
सो वी नीड अ टंग ऑफ अ डिसिपल टू हैव अ कंट्रोल ओवर आवर टंग, नॉट टू स्पीक अननेसेसरी थिंग्स.
और चेलों का एक जुबान की जरूरत है ताकि हम अपनी चीजों के ऊपर हम काबू पाए.
It is a very great temptation to just speak out what we want.
और बहुत ही एक परीक्षा की बात है जब हम कुछ भी अपने जुबानों से हम बोलते हैं.
एंड as we heard about taking up the cross, this is one area where it's a battle till the end to keep our tongue under control.
और जो क्रूस उठाने की जो बात भी हमने देखा है वो भी एक चुनौती है कि हम लगातार अनंत तक अपने जुबान को संभाल के हम चले.
When I am angry, I will just speak out an angry word to hit out at that person.
और जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो मैं एक उस गुस्से से कुछ गलत शब्द मैं बोल देता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर.
When I am depressed, I speak negative and discouraging words.
और जब मैं एकदम उदास हो जाता हूँ, एकदम negative words se main baat karta hu, galat matlab ekdam udaas karne wale vachanon se hi main baat karta hu.
So that is why I need to listen to what God is telling, even in the situation where I am pressurized, or to just speak out something.
Aur mujhe sunna hai, agar mere upar pressure bhi hai, ki parmeshwar sunna hai ki kya mujhe bolna hai.
That is why I desperately need the power of the Holy Spirit constantly in my life.
Aur lagatar mujhe us pavitra atma ka abhishek ka zarurat hai.
Because this world, we are not going to live long time in this world.
क्योंकि इस संसार में हम ज़्यादा समय के लिए नहीं रहने वाले हैं.
We want to pursue after things that are really eternal, of eternal value.
और जो सचमुच में बहुमूल्य जो value के जो वस्तुओं के ऊपर मैं मुझे मेरे मन को लगाना है.
If I run after the things of this world, I cannot expect my children to run after the things of God.
और जब मैं उस संसार के विषय में जब मैं ढूंढता हूं तो मेरे बच्चे जो है उस परमेश्वर के संबंधित विषयों के ऊपर नहीं कोच करेंगे.
I cannot say to my children follow God or be a disciple when I am not a disciple.
जब मैं सांसारिक वस्तुओं के पीछे हूं, मैं मेरे बच्चों से नहीं कह सकता हूं कि तुम परमेश्वर को ग्रहण करो.
वी आर answerable टू our children, फॉर our children also वन डे.
और मैं मुझे अपने बच्चों से भी उसके सामने उनके सामने मुझे खड़ा होना है.
I need to take this seriously that my life and my and whoever God has given me responsibility over, they all will grow up to know the Lord more.
और जैसे कि परमेश्वर मुझे जिम्मेदारी दिया है मेरा जीवन और जिन जनों को संभालने के लिए उनके सामने उनके साथ उस तरीके से बढ़ना है परमेश्वर में.
And to know that this life is precious, little time that I have in this world.
और छोटा जो समय है उस समय को हम ये जाने कि ये बहुत ही मूल्य है.
And as brother said that we need to remember this always. God has called me to be a disciple.
और लगातार ये जान ले कि परमेश्वर ने मुझे एक चेला होने के लिए बुलाया है.
We tend to forget that, and that's why we need to remember this thing that there is a Jesus has called us for that purpose, that we need to remember.
और हम इस चीज को भूल जाते हैं. ये जानना है कि परमेश्वर ने कुछ एक कारण से हमें बुलाया है, कि योजना है प्रभु यीशु मसीह का.
May God help us.
परमेश्वर हमारी सहायता करें.
We read from Luke 9:23, and he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me.
Hum Luka ka 9:23 mein hum padhe ki agar koi mere piche hona chahte hain, wo cross ko lekar ke mera piche pratidin chalna hai.
To follow Jesus, I must know how he denied himself daily in his earthly life and how he took his cross daily.
और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के मुझे पीछे होना है तो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया और क्रूस को उठाया, उसी तरीके से मुझे अपने आप को इनकार करके क्रूस को उठा करके चलना है.
So he has shown an example.
और उसने एक उदाहरण उसने दिखाया है वहां पे.
It's in 1 Peter 2:21.
पहला पत्रस का 2:21 में.
For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps.
और यहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि तुम्हें भी इसीलिए बुलाया गया है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और मेरे लिए एक उदाहरण के तौर पे उसने उस जीवन को जिया है.
I have to follow that example daily.
और मुझे उस उदाहरण को मुझे देखना है और उसके पीछे मुझे हो लेना है.
Then only I can follow him.
और तब जाकर के ही मैं उसके पीछे हो सकता हूँ.
So how I can see his footsteps?
और किस तरीके से मैं उसके उस footsteps को देख सकता हूँ, उस पैर के निशान को देख सकता हूँ?
Without seeing his footsteps, I cannot follow him.
और उसके पैर के निशान देखे बिना तो मैं नहीं चल सकता हूँ.
So how we can see that footsteps?
और किस तरीके से मैं उस पैर के निशान को देख सकता हूँ?
John 14:21.
योहना के रिज़े सुसमाचार का 14:21.
He who has my commandments and keeps them is the one who loves me.
और जो जिसके पास मेरा आज्ञा है उसे सिखाता है वो मेरा है.
So he loves me.
वो मुझसे प्रेम करता है.
So if I show my love to Jesus, the only way is keeping his commandments.
और एक ही तरीके से उसको प्रेम दिखाने का मतलब ये है कि उसका आज्ञा का पालन करना.
When I am keeping his commandments, then he loves me and I'll be loved by my father.
और जब मैं उसका आज्ञा का पालन करता हूँ तो तब जाकर के मुझसे वो प्रेम करता है, तब जाके पिता भी मुझसे प्रेम करता है.
So then what is happening? Then I will love him and will disclose myself to him.
और तब जाकर के वो कहता है कि मैं उससे प्रेम रखूंगा और पूरे अपने आप को उसके सामने मैं प्रकट करूंगा.
So when Jesus is disclosing himself to me,
और जब प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने अपने आप को प्रकट करता है,
then I can see his footsteps.
तब जाकर के मैं उसकी उस पैर के निशान को मैं देख सकता हूँ.
Each time when I am walking,
हर एक बार जब मैं चलता हूँ,
many footsteps are there, but I don't know which footstep is Jesus.
और बहुत से ऐसे पैर की निशानी है, कौन सा प्रभु यीशु मसीह का निशाना मैं नहीं जानता हूँ.
In different situations, I don't know where to keep my foot.
और हर एक परिस्थिति में मैं नहीं जानता हूँ कहाँ पे मेरा पैर को रखना है.
But each time when I am keeping my mind to keep his commandments, he will disclose me. This is my daughter. This is my step.
और जब मैं उसके उस आज्ञा का पालन करता हूँ तो तब जाकर के वो मुझे बताएगा कि ये मेरा निशाना है या ये मेरा पैर का निशान है, यहाँ पे अपने पैर को रखना.
Each time, each situation I am facing, he will show me, he will disclose me, this is my footstep.
और हर एक परिस्थिति में जब मैं परिश्रम करता हूँ उस जगह में वो मुझे दिखाएगा ये मेरा पैर का निशाना है, यहाँ पे अपने आप का अपना पैर को रख.
You keep your foot in this side, this is mine. Then next one, that is mine. So each time he will disclose me.
हर एक बार वो उस चीज को प्रकट करेगा और दिखाएगा कि ये यहाँ पे पैर रखे मेरा है, आगे वहाँ पे मेरा पैर है, वहाँ पे रखना. इस तरीके से वो दिखाएगा और मार्गदर्शन करेगा.
That is the way he will show me to follow his footsteps.
और इस तरीके से वो मुझे दिखाएगा उसके पैर के निशाना को पीछे होने के लिए, उसके ऊपर रख के चलने के लिए.
Before I start sharing,
और बांटने से पहले,
I want to thank all brothers and sisters.
पूरे जो भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ,
जो help me in my expenses for the hospital.
और जिन्होंने मेरे सहायता किया और जो खर्चा था उसके ऊपर भी.
All those who came and met me personally in the hospital.
और जो लोग व्यक्तिगत रूप में आया और मुझे देखने के लिए आया हॉस्पिटल में, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता
हूँ. And for all brothers and sisters who are praying for me.
और जो भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना में मेरा याद किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता
हूँ. I'm very thankful for all of you.
और सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
I thank everyone to be that I am a part of fellowship. I am part of this fellowship.
मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस सहभागिता का एक भाग हूँ मैं.
Thank you for love and care.
और मैं जो प्रेम आपने दिखाया उसके लिए धन्यवाद.
When I was in the hospital,
और जब मैं अस्पताल में था,
I was thinking about what is happening.
और मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है.
At that time, Brother Abu came and told me that it is God's plan.
और भाई अबू आए आकर के कहा कि ये परमेश्वर का एक योजना है.
Nothing happens without God's knowledge.
और प्रभु परमेश्वर का ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता है.
And God tells not even a hair can fall from my head.
और एक बाल भी अगर गिरना है वो उसके आज्ञा के बिना नहीं गिर सकता है.
And when I was praying the whole week,
और जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा.
All the scriptures were speaking about the heart.
और जो भी वचन थे वो पूरा हृदय के बारे में, हृदय के बारे में ही था.
So what does the heart means?
और हृदय का मतलब क्या है?
So when I searched the Bible,
और जब मैंने उसके बारे में खोज किया वचन में,
and I searched on the Google also,
और उसके बारे में गूगल में भी मैंने देखा.
In the Old Testament,
और पुराने नियम में,
the heart is mentioned 725 times.
और हृदय का जो शब्द है 725 बार लिखा गया है.
And in the New Testament it is mentioned 105 times.
और नया नियम में 105 बार लिखा गया है.
And when I applied this to my life,
और जब मैंने अपने जीवन में इसको लागू किया,
I was thinking about the heart.
और मैं हृदय के बारे में देख रहा था,
thinking about my physical heart.
और हमारे जो शरीर में लगा हुआ हृदय कैसा है,
and heart that is spiritual also.
और जो हृदय जो आत्मिक है,
and I was thinking about my sickness.
और मेरा जो बीमारी है उसके बारे में भी मैं सोच रहा था.
It was mentioned that there are veins that supply blood to the heart.
और जैसे कि बताया गया था कि कुछ ऐसे नसें हैं जो हृदय तक खून पहुंचाती है.
And when that gets blocked,
और जब वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाती है,
you get a heart attack.
और तब जाकर के हार्ट अटैक होता है.
And there's one more thing. that is called a cardiac arrest.
और एक चीज है जो medical term में क्या बोला ऐसा है कि cardiac arrest बोलते हैं.
It is very different from this heart attack.
और
this is different from heart attack.
और ये जो है heart attack से अलग है.
This cardiac attack is when your heart stop beating.
और cardiac arrest का मतलब ये है कि जब हृदय जो है काम करना बंद कर देता है.
And this set me thinking. This set me thinking.
और ये चीज जो है मुझे सोचने को मजबूर किया.
It was good that my veins were blocked.
और धन्यवाद मैं अच्छा हुआ कि वो जो जो नस है वो ब्लॉक हो गया.
And I was very glad that my heart did not stop beating.
और
heart did not stop beating.
और मेरा जो हृदय है वो बंद नहीं हुआ चलना.
And when the heart stopped beating, everything is finished.
और क्योंकि अगर हृदय बंद हो जाता है चलना वो पूरा खत्म हो जाता है.
I'm thank God to be alive.
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदा हूँ.
And I have a question for all brothers and sisters here.
और एक सवाल है सब भाई बहन के लिए.
The life you are living today.
और जो जीवन आज हम बिता रहे हैं.
I'm speaking spiritually.
और जो आत्मिक
spiritually, I'm speaking spiritually.
मैं आत्मिक जीवन के बारे में बता रहा हूँ.
If suddenly your heart stop beating.
और आत्मिक रीति से अगर वो बंद हो जाता है.
So how was your life?
कैसा रहेगा आपका जीवन?
If you stand before the throne of God.
जब हम परमेश्वर की उस सिंहासन के सामने खड़े होते हैं.
Is the heart right with God?
क्या वो हृदय परमेश्वर के सामने सही है क्या?
Is this moment?
क्या ये समय?
Is your heart right with God?
क्या इस समय परमेश्वर के साथ हमारा जो हृदय जो आत्मिक हृदय जो है सही है क्या?
Do you have the confidence?
क्या आपके पास वो भरोसा है क्या?
That you'll stand before the throne of God.
क्या आप उस सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं?
Spotless, blameless. Spotless and blameless.
कि उसके अंदर कोई दाग नहीं है, दोष नहीं है.
I want to read from the chapter of Proverbs 4:23.
और नीति वचन का 1:23 में.
4:23.
चार का 23 पढ़ सकते हैं आप लोग.
Above all else, guard your heart.
और सबसे ऊपर अपना हृदय को संभालना.
For everything you do flows from it.
क्योंकि सब कुछ वहां से बहता है.
Proverbs 27:19.
और 27:19 में.
As water reflects the face.
और जैसा कि जो पानी है जो जो रिफ्लेक्शन देता है अपना चेहरा को दिखाता है.
So one's life reflect the heart.
और उसी तरह से वो जो हृदय जो है अपना जीवन को बताती है.
Jeremiah 17.
और यरमिया का 17 में
9 वर्स
9 से 10 पढ़ सकते हैं.
द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स.
और हृदय जो है सबसे एक 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 डिसीटफुल है, गंदा है.
एंड डेस्परेटली विकेड. डेस्परेटली विकेड.
और बहुत ही दुष्ट है.
हु कैन नो इट.
कौन जान सकता है?
आई द लॉर्ड
सर्च. और परमेश्वर ही जान सकता है.
आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट.
और परमेश्वर ही उस हृदय का खोज करता है, ढूंढता है.
I touch the mind.
और मैं मन का खोज करता हूँ.
He want to give every man according to his ways.
और हर एक व्यक्ति को उसके अनुग्रह के अनुसार वो देता है.
According to the fruits of his doing.
और उसका काम के अनुसार वो फल देता है.
I want to read from Ezekiel 36:26.
Ezekiel का पुस्तक 36:26 Ezekiel.
What happens if you are not right with God?
और जब मेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है क्या होता है?
So I can repent now.
और अभी मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ.
And claim the promise of God.
और वायदा को मैं ले सकता हूँ.
Ezekiel 36:26.
और Ezekiel का 36:26.
I will give you a new heart.
और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा.
And put a new spirit within
you. एक नया आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा, तुम्हारे हृदय के अंदर.
I will take the heart of stone out of your flesh.
और तुम्हारे जो पत्थर के जो हृदय को मैं उसे निकाल दूंगा.
And give you a heart of flesh.
और तुम्हें एक एक मांस की एक 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 हृदय दूंगा.
I want to speak regarding the heart spiritually.
और आत्मिक रीति का जो हृदय है उसके बारे में एक बताना चाहता हूँ.
Just as the veins supplying blood to the heart.
और जैसा एक एक नस जो अपना शरीर की हृदय को खून पहुंचाती है.
What happens when the spiritual veins are supplying blood?
और जैसे कि आत्मिक रीति की रीति के रीति से जो आत्मिक जो नसें हैं जो खून पहुंचाती है.
That veins which are faulty. The veins that gets faulty.
और जो नसें जो एकदम faulty है, जो काम नहीं कर रही है.
And which is a danger for the heart.
और वो बहुत ही एक danger स्थापित होगा हृदय के लिए.
I want to read some of the symptoms of the heart.
और कुछ सिम्टम्स हैं जो 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 हृदय के बारे में.
And to read from Mark 7.
और मार्क का 7 से हम पढ़ सकते हैं 21 से 23 तक.
For from within out of the heart of man proceed evil thoughts, adultery, fornication, murders.
और जो जो वहाँ पे 7 का 21 से लेके 23 हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हृदय से पूरी जो गंदी गंदी बातें हैं विचारें हैं वो सब आता है.
Even pride, foolishness.
और वहाँ पे सब कुछ लिखा गया है मूर्खता जो है और प्राइड के बारे में लिखा गया है.
All these evil things come from within and defile a man.
और सब जो अशुद्ध जो बातें हैं वो जो है वो अंदर से निकलती है.
So the question for me and for all of us today.
और एक सवाल मेरे लिए और हम सब के लिए है.
What is the status of my heart spiritually?
और आज मेरा जो आत्मिक स्थिति क्या है मेरा मेरा आत्मिक हृदय का.
Suppose your heart starts beating today.
और आज मेरा हृदय चल रहा है.
So what will be your status?
कैसा है मेरा स्थिति आज?
Can we examine our heart today?
क्या हम अपने हृदय को जान सकते हैं?
And repent.
और उसके ऊपर पश्चाताप कर सकते हैं.
And just as brother Abu told us.
और जैसे भाई अबू ने बताया.
That we'll take up a cross.
और हम अपने क्रूस को उठाएं.
And follow Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें. Let us pray and close. Just as Brother Abu said, that one thing God is talking to us, speaking to us. एक बात है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है. वो है कि क्रूस को उठाना, उसके अधीन में रहना, उसका चेला बनना, और उसका आज्ञाओं का पालन करना. Obeying His command, being under His authority. And being His disciple. This is what Lord is speaking to us. And that can only happen when I take the cross daily. Jab main apna cross ko pratidin uthata. And God can only help us. Parmeshwar hi hamare sahayata kar sakte. Let us pray and close. Heavenly Father, gracious Lord, we come to you as we are, O Lord. Jaise hum hain, waise aapke samukh mein aate hain, Prabhu ji. Prabhu, जैसे आपने वचन दिया, हमारे पूरे जो बोझ है, जो परिश्रम है, जो भी चीजें जो हमारे मन के अंदर चल रही है प्रभु, वो सब हम उतार के हम रखना चाहते हैं प्रभु जी. प्रभु आपके सम्मुख में वी वॉन्ट टू जस्ट कीप ऑल दैट लोड वॉट वी आर कैरिंग ओ लॉर्ड. वी डोंट वॉन्ट टू कैरी इट ओ लॉर्ड. वी डोंट वॉन्ट द वर्ल्ड अराउंड ओ लॉर्ड. वी डोंट वॉन्ट टू फॉलो द वर्ल्ड ओ लॉर्ड. लॉर्ड वी जस्ट वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट एंड फोकस ourselves, O Lord, to be your disciple. हम आपके चेला बनना चाहते हैं प्रभु. Want to be under your authority, प्रभु जी. हम आपके उस अधिकार के अधीन में बनना चाहते हैं प्रभु. हमारी सहायता मदद करना. We want your Holy Spirit, O Lord. पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहते हैं. We want that anointing every day, O Lord. प्रतिदिन हम उस अभिषेक को चाहते हैं. Yes, O Lord, bless us, O Lord. Bless the church, O Lord. Bless the body, O Father. Connect us with one another with that fellowship, O Lord. एक दूसरे को प्रभु उसी प्रभु सहभागिता से प्रभु जी आप बांध के रखिए. एक कलीसिया के रूप में, आपके देह के रूप में प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमेन.